समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
आज क्रिसमस है। ये पर्व पूरी दुनिया में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। वैसे तो ये त्योहार मुख्य रूप से ईसाई लोग मनाते हैं, लेकिन भारत में सभी धर्म के लोग इस पर्व को मनाते हैं। क्रिसमस एक दूसरे को सुख शांति और प्रेम की कामना करने का त्योहार है। आपको और आपके प्रियजनों को शुभकामनाएं।
Yes, listeners, Merry Christmas. He is wishing you a Christmas that's as sweet as a candy cane. And may the festive cheer be with you all listeners.
जी हाँ, इसी के साथ आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल पर शुरू करते हैं आज सवेरे कार्यक्रम। और हम हाजिर हैं एक बार फिर देश दुनिया के अब तक के समाचार और वो सभी जानकारी लेकर जिनका आपसे है सरोकार। नमस्कार, सुप्रभात। आज सवेरे के संघ के साथ मैं हूँ मुकेश कुमार और मेरे साथ है मेरी सहयोगी शगुन चोपड़ा। शगुन, आपको भी मेरा नमस्कार।
नमस्कार मुकेश, नमस्कार। हेलो, गुड डे एवरीबॉडी, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स ट्यून्ड इनटू आकाशवाणी एफएम गोल्ड ऑन 100.1 मेगाहर्ट्ज एंड द आकाशवाणी नेटवर्क। This is Aaj Savere and we are here with you listeners. Well, first, let's tell our listeners what should they be expecting here. We'll first give the latest national and international news and we'll provide you metro city updates and we'll explore today's historical information. And as we all know, today it's 25-12-25, right?
जी।
We are beginning with the headlines first.
जी, सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक के मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लखनऊ में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को समर्पित राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। स्वतंत्र भारत की महान विभूतियों की गौरवशाली विरासत का सम्मान करने के श्री मोदी के संकल्प के अनुरूप निर्मित राष्ट्र प्रेरणा स्थल अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन और आदर्शों के प्रति श्रद्धांजलि होगी। उनके नेतृत्व ने देश की लोकतांत्रिक, राजनीतिक और विकास यात्रा पर गहरी छाप छोड़ी है।
The External Affairs Ministry has stressed that disrespectful acts such as demolishing statues of deities hurt the sentiments of followers around the world and should not take place. In response to media queries on the demolition of Hindu deity statue in an area affected by the ongoing Thai-Cambodia border dispute, Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said Hindu and Buddhist deities are deeply revered and worshipped by people across the region as part of shared civilizational heritage. He urged the two sides to return to dialogue and diplomacy, to resume peace and avoid any further loss of lives and damage to property and heritage.
पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू को अटल स्मृति न्यास सोसाइटी का अध्यक्ष चुना गया है। सोसाइटी के संस्थापक सदस्य राम बहादुर राय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित अन्य सदस्यों से परामर्श के बाद श्री नायडू का नाम इस पद के लिए प्रस्तावित किया था। श्री नायडू ने विजय कुमार मल्होत्रा का स्थान लिया है। श्री मल्होत्रा का हाल ही में निधन हो गया था। ये भी निर्णय लिया गया कि श्री नायडू समिति के अध्यक्ष के रूप में अन्य लोगों से परामर्श करेंगे और न्यास के मामलों के प्रबंधन के लिए शासी निकाय और कार्यकारी समिति के सदस्यों का गठन करेंगे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि देश में मलेरिया के रोगियों की संख्या में 80% से अधिक की कमी आई है। उन्होंने कहा कि मलेरिया से होने वाली मृत्यु दर में भी 78% की गिरावट आई है। नई दिल्ली में कल श्री नड्डा ने कहा कि 30,000 से अधिक आयुष्मान आरोग्य मंदिरों को राष्ट्रीय गुणवत्ता मानक प्रमाणन प्राप्त हुए हैं।
Well, let's give our listeners sports updates. So, in domestic cricket, star Indian batters Virat Kohli and Rohit Sharma shamshed centuries on the opening day of Vijay Hazare Trophy yesterday. So, playing for Delhi, Virat Kohli scored 131 off 101 balls while chasing a target of 299 runs. Set by Andhra Pradesh at the BCCI Centre of Excellence Ground 1 in Bengaluru. So Delhi won the match by 4 wickets with Priyansha Arya and Nitish Rana's half centuries adding to Kohli's ton. On the other hand, hitman Rohit Sharma made 155 off just 94 balls against Sikkim at Sawai Man Singh Stadium in Jaipur. So Rohit Sharma's exceptional innings, they helped Mumbai in beating Sikkim by 8 wickets while chasing a target of 200. 37 runs.
पुरुष हॉकी टीम के उपकप्तान और दो बार के ओलंपिक पदक विजेता हार्दिक सिंह को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है। भारतीय ओलंपिक संघ के उपाध्यक्ष गगन नारंग, पूर्व हॉकी खिलाड़ी एमएम सुमैया और पूर्व बैडमिंटन खिलाड़ी अपर्णा पोपट की चयन समिति ने नामांकन को अंतिम रूप दिया। योगासन प्रतिभागी आरती पाल सहित 24 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है। खेल रत्न युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय द्वारा प्रतिवर्ष दिया जाने वाला सर्वोच्च खेल सम्मान है।
Well, yes, we also told you in the beginning, Christmas is being celebrated across the globe today. Christians all over the world celebrate Christmas to mark the birth of Jesus Christ. On the occasion, people decorate their houses by putting a Christmas tree, illuminated paper star, holly wreaths, and exchange gifts. So churches, all denominations are organizing special Christmas services and events. Pope Leo XIV is presiding over the Christmas celebrations for the first time after being elected in May, and this happened this year. So today, the Pope will celebrate a Christmas Day Mass and deliver a twice yearly Urbi et Orbi to the city and the world message and blessing.
और आज सवेरे कार्यक्रम में वक्त है मेट्रो न्यूज का, तो शगुन आप सबसे पहले चेन्नई की खबरों पर नजर डालें।
Yes, beginning with Chennai, and this update is about the synchronized birth census for the year 2025-26,
which is
proposed to be conducted in two phases by the Tamil Nadu Forest Department. This includes wetland birth census, including inland and coastal wetlands, and terrestrial bird census. So during the last exercise, a total of 397 bird species were recorded, and this included both migratory and resident populations, and the overall bird count was calculated to 5.5 lakhs, huge number.
Bilkul.
So the wetland bird census is scheduled to be conducted on 27th and 28th December, as the migratory bird season in Tamil Nadu generally begins with the onset of northeast monsoon in October and continues till April. So the timing is chosen to bridge the data gaps during early part of the migratory season. The wetland bird census will be conducted in a minimum of 25 locations per forest division. In the statewide bird census, experienced bird watchers, volunteers, NGO representatives, professional photographers and forest department officials, they will participate in this mega exercise.
और अब मुंबई के समाचारों पर नजर डालते हैं। बृहन मुंबई महानगर पालिका बीएमसी चुनावों के लिए महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में शिवसेना ने पार्टी के 40 प्रमुख प्रचारकों की सूची जारी की है। इस सूची में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और जाने माने चेहरों को शामिल किया गया है। बीएमसी सहित 29 नगर निगमों के लिए होने वाले इन महत्वपूर्ण चुनावों के लिए मतदान 15 जनवरी को होगा, मतगणना 16 जनवरी को होगी। भारतीय अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने कल भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मुंबई में वार्षिक टेक फेस्ट में कहा कि अंतरिक्ष से देखने पर भारत आज आत्मविश्वास से भरा, सक्षम, साहसी और निडर दिखाई देता है। श्री शुक्ला ने कहा कि अंतरिक्ष में रहने का अनुभव असाधारण है और भारतीय वायुसेना के कठोर प्रशिक्षण ने इस कार्य को आसान बना दिया था। और आप बताएं अब बेंगलुरु की क्या खबरें हैं?
Yes, Mukesh, focusing now on Bengaluru, the Karnataka Digital Economy Mission from Karnataka State Government and the Federation of Karnataka Chambers of Commerce and Industry, they have signed a memorandum of understanding to drive the Beyond Bengaluru initiative to transform the districts in Karnataka into vibrant digital and economic hubs. So its objective is to decentralize IT growth, create district-level employment and leveraging technology for balanced economic development across the state. Speaking at the MOU signing event, the Secretary in the Department of Electronics, IT, BT and Science and Technology in Karnataka, Dr. N. Manjula, highlighted the ongoing efforts to build IT hubs beyond Bengaluru in 6 operational clusters outside the state capital. So she also informed that collaborative governance, MSME digitization, AI-led delivery mechanism, tech upskilling programs, these initiatives, they accelerate by the government, they will help usher in inclusive growth.
और कोलकाता का रुख करते हैं। कोलकाता मेट्रो रेल ने क्रिसमस पर आज यात्रियों की सुरक्षा संरक्षा और सुगम आवागमन सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा उपायों को काफी मजबूत करने का निर्णय लिया है। इसके लिए रेलवे सुरक्षा बल के अतिरिक्त कर्मियों को पूरे नेटवर्क पर तैनात किया जा रहा है। किसी भी संभावित आपात स्थिति से निपटने के लिए पार्क स्ट्रीट मैदान और एस्प्लेनेड स्टेशनों पर त्वरित कार्रवाई दल तैनात रहेंगे। पर्याप्त संख्या में महिला आरपीएफ अधिकारी और कर्मचारी पार्क स्ट्रीट पर तैनात रहेंगे। इस स्टेशन पर आमतौर पर त्योहारों के दौरान सबसे अधिक भीड़ होती है। केंद्रीय नियंत्रण कक्ष से 2400 घंटे सीसीटीवी से कड़ी निगरानी रखी जाएगी। किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए खोजी कुत्तों की टुकड़ियों को भी तैनात किया गया है।
And now let's turn our attention to Hyderabad. In Telangana, several trade and industry bodies have expressed concerns over recent policy and regulatory developments and cautioned that abrupt changes could hinder the state growth story. They have urged the state government to reconsider these pressing issues, which include power tariffs rules, the lack of renewable energy clearances, and the sudden implementation of government orders under the Hyderabad Industrial Lands Transformation Policy. And about a dozen industry bodies, including the Federation of Telangana Chambers of Commerce and Industry, Telangana Industrialists Federation, Telangana Iron and Steel Manufacturers Association, Telangana State Tool Manufacturers Association, and they represent the interests of over 50,000 manufacturing and service units.
और अब दिल्ली का रुख कर लेते हैं। दिल्ली में निजी स्कूलों की फीस निर्धारण प्रक्रिया को पारदर्शी, जवाबदेह और समयबद्ध बनाने की दिशा में दिल्ली सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा कि दिल्ली स्कूल एजुकेशन एक्ट 2025 और इससे अंतर्गत बनाए गए नियमों को शैक्षणिक सत्र 2025-26 से प्रभावी रूप से लागू किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस कानून के सफल कार्यान्वयन के लिए स्कूल और जिला स्तर पर दो महत्वपूर्ण समितियों का गठन किया गया है। दिल्ली में बढ़ती सर्दी और प्रदूषण नियंत्रण को देखते हुए स्वास्थ्य और परिवहन मंत्री पंकज कुमार सिंह ने कल विकासपुरी में 100 इलेक्ट्रिक हीटर वितरित किए। इसका उद्देश्य खुले में कोयला और लकड़ी जलाने जैसी प्रदूषणकारी गतिविधियों को रोकना है। ये पहल दिल्ली सरकार की शीतकालीन कार्य योजना के अनुरूप है, जिसके अंतर्गत राजधानी में रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के सुरक्षा गार्डों के लिए 10,000 इलेक्ट्रिक हीटर वितरित किए जा रहे हैं। दिल्ली विधानसभा में कल केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय तथा मेरा युवा भारत ने संयुक्त रूप से एक कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत राजस्थान से आए युवाओं के साथ विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने संवाद किया। श्री गुप्ता ने कहा कि युवाओं के विचार, उनकी ऊर्जा और लोकतंत्र के प्रति जिज्ञासा सशक्त भारत की आधारशिला है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने स्वास्थ्य अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि मरीजों के उपचार में किसी भी प्रकार की देरी न हो और अस्पताल में आने वाले हर रोगी का सम्मान हो। उन्होंने कल दिशाल गार्डन में राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के निरीक्षण के दौरान ये निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कल दिव्यांगजनों के दिव्य अटल कार्यक्रम में दिव्यांगजनों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार दिव्यांगजनों के लिए शिक्षा, कौशल विकास, रोजगार और सुलभ सार्वजनिक व्यवस्थाओं को मजबूत करने की दिशा में निरंतर काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को याद करते हुए कहा कि उनका सपना ऐसे भारत का निर्माण का था जहाँ हर व्यक्ति सम्मान के साथ अपनी क्षमता पहचान सके। आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आज सवेरे, मुकेश कुमार और शगुन चोपड़ा के साथ। और आज सवेरे में वक्त हुआ है मौसम का हाल जानने का, तो सबसे पहले दिल्ली का मौसम बताएं अपने श्रोताओं को।
श्योरली,
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में आज हल्का कोहरा छाया रहा। आज का अधिकतम तापमान 22 डिग्री और न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। कोलकाता में सवेरे कोहरे के कारण हल्की धुंध छाई रही और बाद में अब आसमान जो है वो साफ रहेगा। आज का अधिकतम तापमान 24 डिग्री और न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। और मुंबई में आज आसमान साफ रहेगा, अधिकतम तापमान 33 डिग्री और न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। तो शगुन, ये बात हुई दिल्ली, मुंबई और कोलकाता के मौसम की, आप बताएं कि चेन्नई, हैदराबाद और बेंगलुरु में कैसा रहने वाला है मौसम?
राइट मुकेश, फर्स्ट लेट्स टेल आवर लिसनर्स अबाउट चेन्नई। इट इज एक्सपेक्टेड टू हैव जनरली क्लाउडी स्काई विद एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ लाइट रेन। द मिनिमम टेम्परेचर वाज 22 डिग्री सेल्सियस एंड मैक्सिमम विल बी अराउंड 30 डिग्रीज। बेंगलुरु इज एक्सपेक्टेड टू हैव मिस्ड। द मिनिमम टेम्परेचर वाज 15 डिग्री सेल्सियस एंड मैक्सिमम विल बी अराउंड 27 डिग्री सेल्सियस देयर। Hyderabad is expected to have fog mist in the morning and mainly clear sky later, and the temperature, minimum temperature, will be around 14 degrees Celsius, Maximum temperature, though, there will be at around 29 degrees Celsius there, Mukesh.
और अब समय है इतिहास के पन्नों को पलटने का और उन घटनाओं पर नजर डालने का जो आज के दिन का इतिहास बन गई. आज 25 दिसंबर है और आज ही के दिन सबसे पहले क्या हुआ था?
Yes, 25/12/25. I had to mention this. So, Mukesh, in the 1771, Shah Alam II sat on the throne of Delhi. Marathas captured Delhi and induced Shah Alam to return to Delhi after an absence of 18 years from the capital.
1892 में आज ही के दिन स्वामी विवेकानंद कन्याकुमारी में समुद्र के मध्य स्थित चट्टान पर तीन दिन तक उन्होंने साधना की थी.
In 1932, King George V's chair collapsed during his Christmas dinner speech.
1946 में आज ही के दिन ताइवान में संविधान को अंगीकार किया गया था.
Three years back, Japanese bombers, they raided Chittagong.
1962 में आज ही के दिन सोवियत संघ ने नोवाया जेमलिया क्षेत्र में परमाणु परीक्षण किया था और 1991 में राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचोव के त्यागपत्र के साथ सोवियत संघ का विभाजन और उसका अस्तित्व समाप्त हो गया था.
In 1995 now, first major multi-organ transplant in the country, it was performed in Apollo Hospital in Madras. And in 1997, India, Sri Lanka one-day cricket match at Indore abandoned. It was abandoned after three overs owing to a bad state of the pitch, and this is a rare occurrence.
बिल्कुल. और 1998 में आज ही के दिन रूस और बेलारूस द्वारा एक संयुक्त संघ बनाए जाने संबंधी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे.
In the year 2000, listeners, Atal Bihari Vajpayee, the Prime Minister, launched a 60,000 crore rupee initiative, Gram Sadak Yojana, for linking all villages, and the Antyodaya Ann scheme for providing cheap food grains under the TPDS.
और 2005 में आज ही के दिन मॉरिशस में 400 वर्ष पूर्व विलुप्त डोडो पक्षी का 2000 वर्ष पुराना अवशेष मिला था. और अब आज सवेरे कार्यक्रम में वक्त हुआ है उन महान विभूतियों को याद करने का जिनकी आज पुण्यतिथि है. इस क्रम में हम याद कर रहे हैं चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को. आज उनकी पुण्यतिथि है. ये नाम भारतीय इतिहास का एक ऐसा स्वर्णिम पृष्ठ है जिसकी एक सशक्त जननायक, स्वप्नदर्शी राजनायक, आदर्श चिंतक, दार्शनिक के साथ साथ युग को एक खास रंग देने की महक उठती है. उनके व्यक्तित्व के इतने रूप हैं, इतने आयाम हैं, इतने रंग हैं, इतने दृष्टिकोण हैं जिनमें वे व्यक्ति और नायक हैं, दार्शनिक और चिंतक हैं, प्रबुद्ध और प्रधान हैं, वक्ता और नेता हैं. उनकी उपलब्धियों को वैराट्य को देखते हुए उनको दी गई राजा जी की उपाधि उचित ही है. उन्हें भारतीय राजनीति के शिखर पुरुष कहा जाता है. गीता, रामायण और महाभारत के अनुवाद उन्होंने अपने ढंग से किए. मौलिक कहानियों के सृजन में वे सिद्धस्थ थे. मुपासा और खलील जिब्रान की तरह उन्होंने जीवन के गहन से गहन तत्व पर बड़ी सहज सरल भाषा में अपनी अभिव्यक्ति दी और साहित्य अकादमी ने उन्हें पुस्तक चक्रवर्ती थुमगम पर सम्मानित किया. उन्होंने कुछ दिन तक महात्मा गांधी की यंग इंडिया का संपादन कार्य कर इस क्षेत्र में अपनी प्रतिभा भी प्रदर्शित की थी.
Well, yes, we are telling you about C. Rajagopalachari, the prominent figure in India's independence movement and a key political leader. So his journey into public life, it began in the year 1970. And well, inspired by Mahatma Gandhi, he gave up his legal profession to join the freedom struggle. And well, for his contributions, he was awarded the Bharat Ratna in 1954. जी. As well as you mentioned about him being a renowned writer with his notable works, which included the retellings of Mahabharat and Ramayana in English as well as Mukesh in Tamil literature.
और अब हम याद करते हैं भारत के जाने माने नाटककार, पटकथा लेखक, फिल्म और नाट्य निर्देशक सत्यदेव दुबे को. आज उनकी पुण्यतिथि है. उन्होंने फिल्मों में भी काम किया और कई पटकथाएं लिखीं. देश में हिंदी के अकेले नाटककार थे जिन्होंने अलग अलग भाषाओं के नाटकों को हिंदी मिलाकर उन्हें अमर कर दिया. शुरुआती दिनों में दुबे जी की क्रिकेट के प्रति दीवानगी थी और वे एक नामी क्रिकेटर बनना चाहते थे और अपने सपनों को पूरा करने के लिए मुंबई चले आए. लेकिन शौकिया तौर पर भारतीय रंगमंच के पितामह कहलाने वाले इब्राहिम अलकाजी द्वारा संचालित थिएटर्स के संपर्क में आने से उनकी जिंदगी बदल गई और पीडी शिनॉय और निखिल जी का मार्गदर्शन रहा. अलकाजी राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के प्रमुख का पद संभालने दिल्ली चले गए तो मुंबई में उनके रंगमंच की कमान दुबे के हाथों में आ गई और सत्यदेव दुबे ने श्याम बेनेगल की फिल्म भूमिका के अलावा कुछ अन्य फिल्मों के लिए भी कहानी और संवाद लिखे. उनके द्वारा चलाए जाने वाली थिएटर कार्यशाला को पेशेवर और शौकिया तौर पर थिएटर वाले लोग एक समान पसंद किया करते थे. निर्देशक के रूप में उन्होंने 1956 में काम शुरू किया. वे अनेक मराठी और हिंदी फिल्मों के निर्देशक रहे और सत्यदेव ने कुछ फिल्मों में अभिनय भी किया था. कुछ फिल्मों का निर्देशन भी किया। उन्होंने निर्देशक श्याम बेनेगल और गोविंद नेहलानी की फिल्मों की संवाद और पटकथा भी लिखी थी।
Well, today, listeners, we're also remembering William Collins, regarded as one of the most skilled 18th century lyric poets. Marking a transitional period in English literature, William Collins' style is formally neoclassical, but it then progresses over the themes of romantic period. His treatment of individual experience and descriptions of emotions, they influenced his peers as well and for the next generation of writers. And, well, his 1742 publication, Persian Eclogue, it was warmly received by both readers and critics, and he followed his success with verses humbly addressed to Sir Thomas Hanmer. This was published in 1743. And, well, he garnered little attention, and during Collins' lifetime, the poems in his odes and several descriptive and allegoric subjects, this was published in 1746. These are among his most celebrated, and this also includes Ode to Evening and Ode to Fear.
और अब हम याद कर रहे हैं भारतीय सिनेमा की प्रसिद्ध अभिनेत्री साधना की। आज साधना की पुण्यतिथि है। उन्होंने फिल्म अबाणा से अपने फिल्मी सफर का आरंभ किया था और साधना ने हिंदी फिल्मों से जो शोहरत पाई, जो मुकाम हासिल किया, वो किसी से छिपा नहीं है। साधना का पूरा नाम साधना शिवदासानी था। वो अपने माता पिता की एकमात्र संतान थी और अपने बालों की स्टाइल के लिए वो खास प्रसिद्ध रहीं और उनके बालों की कट स्टाइल साधना कट के नाम से जानी। बिल्कुल। तो सबसे पहले उनकी जो फिल्म है मेरा साया, उसका गाना सुना जाए।
जी। Well, yes, Sadhana continued making films and became one of the biggest stars of the 1960s, and her hits like Mere Mehboob, Hum Dono, Asli Nakli as well, and this edition that you were talking about, her hairstyle, the Sadhana fringe. She started also the trend of Churidar pajama and kameez with Saleem Shah in the film Vakt in 1965.
Bilkul.
So a trendsetter.
Bilkul. To Vakt ka ek gana sunte hain.
Her acting in the film was much appreciated, and she was also nominated then, Mukesh, for a Filmfare Award as Best Actress then. And her major films, her major hits, and many of them, they are still remembered as all-time classics.
बिल्कुल। 1955 में राज कपूर की फिल्म श्री 420 के गीत ईचक दाना बीचक दाना में एक कोरस लड़की की भूमिका साधना को मिली थी और उस वक्त वो केवल 15 वर्ष की थी। दरअसल साधना को एक विज्ञापन कंपनी ने अपने उत्पादों के लिए मौका दिया था और इन्हें भारत की पहली सिंधी फिल्म अबाणा में काम करने का मौका मिला, जिसमें उन्होंने अभिनेत्री शीला रमानी की छोटी सी भूमिका निभाई थी और इस फिल्म के लिए उन्हें 1 रुपये की टोकन राशि का भुगतान किया गया था। इस सिंधी खूबसूरत बाला को शशधर मुखर्जी ने देखा, जो उस वक्त बहुत बड़े फिल्मकार थे, और शशधर मुखर्जी को अपने बेटे जॉय मुखर्जी के लिए एक हीरोइन के नए चेहरे की तलाश थी। तो उनकी एक फिल्म आई थी राजकुमार,
yeah.
उसमें उन्होंने बहुत अच्छा अभिनय किया, तो उस फिल्म का गाना भी अपने श्रोताओं को सुनाए। और साधना ने कई फिल्मों में अभिनय किया। रोमांटिक और रहस्यमय फिल्मों के अलावा उन्हें कला फिल्मों में भी बहुत सराहा गया। उनकी हेयर स्टाइल जैसे कि हमने शुरू में ही बताया था, उसके अलावा उनकी जो कपड़े हैं उनके बारे में भी, चूड़ीदार कुर्ता, शरारा, गरारा, कान में बड़े बड़े झुमके, बाली और लुभावनी मुस्कान, ये सब साधना की विशिष्ट पहचान बन गई। तो उन्होंने एक और फिल्म थी आरजू, उसमें बहुत अच्छा अभिनय किया। उस फिल्म का गाना सुनते हैं।
So let me also mention, Mukesh, another film. So this, like she covered, she basically presented her mysterious side. And this gave her, the character that she played in Wo Kaun Thi. So the film became a huge hit with its themes of the Alfred Hitchcock film Vertigo and gave Sadhana her signature role of the mystery girl, where her performance kept everyone guessing till the very end of the movie. Beautiful song.
Bilkul.
Listeners, today, let me also mention an actor, well, producer and director as well. We are remembering Charlie Chaplin. He's widely regarded as the greatest comic artist of the screen and has inspired so many other comic artists as well. One of the most important figures in motion picture history.
बिल्कुल। और आज महान स्वतंत्रता सेनानी, राजनीतिक, शिक्षाविद और बड़े समाज सुधारक मदन मोहन मालवीय की जयंती है। हिंदू राष्ट्रवाद के समर्थक मदन मोहन मालवीय देश की जातिगत बेड़ियों को तोड़ना चाहते थे। उन्होंने दलितों के मंदिरों में प्रवेश निषेध की बुराई के खिलाफ देशभर में आंदोलन चलाया। 24 दिसंबर 2014 को भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने पंडित मदन मोहन मालवीय को मरणोपरांत देश के सबसे बड़े नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा था।
So today we are also remembering Naushad Ali, the Indian composer for Hindi films, hailed as Sangeet Samrat and Kohinoor of Bollywood music. He composed music for 65 films, the pristine melody of his songs, many are immortal, and this makes him a colossus of creativity.
Abhi saath hain, abhi zindagi ke bahane bahut hain. Dare ghair par bheek mango na fan ki, jab apne hi ghar mein khazane bahut hain. हैं दिन बदमजाकी के नौशाद, लेकिन हैं दिन बदमजाकी के नौशाद, लेकिन अभी तेरे फन के दीवाने बहुत हैं। गूंजते हैं तेरे नगमों से अमीरों के महल, गूंजते हैं तेरे नगमों से अमीरों के महल, झोपड़ों में भी गरीबों के तेरी आवाज है, और अपनी मौसीकी पे सबको फख्र होता है, मगर मेरे साथी आज मौसीकी को तुझ पर नाज है।
और एक फिल्म में उन्होंने अपना हुनर दिखाया था, नाम है बैजू बावरा। तो क्यों ना उस फिल्म के गाना सुना जाए।
ओ दुनिया के रखवाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले।
और एक और बहुत अच्छा सा गाना हम आपके लिए लेकर आए हैं फिल्म साथी का, तो उसे भी सुनते हैं।
प्यार भी तू है, ये बाहर भी तू है, तू ही नजरों में जाने तमन्ना, तू ही नजारों में।
मेरा प्यार भी तू है, ये बाहर भी तू है, तू ही नजरों।
और आज भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती है, और उनका जो एक भाषण का हमने टुकड़ा निकाला है वो अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं।
गीत नहीं गाता हूँ, बेनकाब चेहरे हैं, दाग बड़े गहरे हैं, टूटता तिलस्म आज सच से भय खाता हूँ, गीत नहीं गाता। लगी कुछ ऐसी नजर, बिखरा शीशे सा शहर, अपनों के मेले में मीत नहीं पाता हूँ, गीत नहीं गाता। पीठ में छुरी सा चांद रा हो गया रेखा फांद, मुक्ति के क्षणों में बार बार।
और घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि आज का सवेरे कार्यक्रम यहीं समाप्त किया जाए, तो अनुमति दें मुकेश कुमार और शगुन चोपड़ा को कार्यक्रम समाप्त करने की। नमस्कार, नमस्कार।